વેધવલા પુસ્તક 15 લેક્ચર નંબર 3 ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ નમઃ સિદ્ધેય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો નમો સિદ્ધાણ નમો આયર્યાણ નમો વૈછાયાણ નમો લોયે સૌવસાહૂણ મુનિય પરમત્થ વિત્તર મુનિવર વીરૈ સિદ્ધ વિજ્ઞેહિ જાસંતુ આમયવદી પસ્યૌ સ્વયદેવયા વચ્ચં સુસુદેવયાય ભક્તિ સુદોવજોગોવભાવિયો સમ્મં આવહૈ નાણસિદ્ધિં નાણફલં ચાવિનિર્વાણં તોસુવદેવયમિનમૌ ૂણભક્તિ જહાસુક્ત ચારિતમોહ સફણ. યહ શ્રી બીરસેન આચાર્ય રચિત જયધવલા ટીકા હૈ જો કષાય પાહુર તથા ચૂર્ણીસૂત્ર ગ્રંથો પર લિખી હુઈ હૈ જિનકે કરતા હૈ ગુણધર ભટ્ટારક તથા યતિવૃષભ આચાર્ય જિન્હોને ભગવાન મહાવીર કે ઉપદેશ કે અનુસાર ઇન ગ્રંથો કી રચના કી હૈ. પંદરમી પુસ્તક મેં વહી ચારિત્ર મોક્ષ અપના કા અર્થાધિકાર દેખતે હુએ હમ પૃષ્ઠ સંખ્યા 12 પર આ ગયે. 12 યહાં અભી હમ દેખ રહે હૈ કે નવે ગુણ સ્થાન મેં અપગત વેદ હોને પર અશ્વકર્ણ ક્રિયા ઓર અપૂર્વ સ્પર્ધક ક્રિયા હોતી હૈ ઉસકે પશ્ચાત કી બાત યહાં શરૂ હો રહી હૈ તો ઉસકો કહેતે કૃષ્ટિકરણ કાલ. यहाँ कृष्टि करने का कार्य यहाँ हो रहा है. कृष्टि का अर्थ होता है जो अभी तक स्पर्धकों में वर्गणाओं के समूह को हम स्पर्धक कहते थे और एक एक वर्गणा के प्रति अविभाग प्रतिच्छेद एक एक से बढ़ता था. अब यहाँ पर कृष्टि का अर्थ होता है इतना अनुभागहीन हुआ है कि एक कृष्टि से उसके ऊपर की कृष्टि अनंत गुणा उसके ऊपर की उससे भी अनंत गुणा इतना ही नहीं वो अनंत का भी ગુણકાર એવો અનંત ગુણા બઢતા જાય. સંખ્યા જૈસે વર્ગણા હમ આડી લાઈન દિખાતે નિષેક આડી લાઈન દિખાતે એસે વર્ગણા ભી પરમાણુ કા સમૂહ હૈ ઉન સબકા આપસ મે અનુભાગ સેમ હૈ સમાન હૈ પરંતુ એક કૃષ્ટિ સે દૂસરી કૃષ્ટિ મે જો પરમાણુ હૈ ઉનકા અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ અનંત ગુણા હૈ. એને પહેલે સે દૂસરે મેં અનંત ગુણા દૂસરે સે તીસરે મેં અનંત ગુણા પણ એ પહેલે વાલા જો અનંત ગુણા થા ઉસસે દૂસરે વાલા અનંત ગુણા વાલા ગુણકાર વો ભી અનંત ગુણા હો જાતા હૈ.
અનંત
હા એને માન લે કે હમને દો ગુણા ભી કહે દે પહેલે સે દૂસરે મેં દો ગુણા તો ઉસસે દૂસરે સે તીસરે મેં ચાર ગુણા તીસરે સે ચોથે મેં આઠ ગુણા એ અનંત ગુણા અનંત ગુણા તો જીતને ગુણકાર હૈ ગુણકાર કિતને હોગે જીતને અંતરાલ હૈ ઉતને ગુણકાર હૈ. ચાર પૃષ્ટિ હોગી તો તીન અંતર હુએ ઓર ઉસ અંતર કો હી ગુણકાર કહા ક્યુંકી ઉસમે કિતને કા અવિભાગ પ્રતિચ્છેદ કા ડિફરન્સ હૈ તો અનંત ગુણ હૈ તો તીન ગુણકાર હોગે તો એક સે દૂસરા દૂસરે સે તીસરા ગુણકાર ભી અનંત અનંત ગુણા હોતા હૈ એને ગુણકારો કે વેરિએશન્સ કિતને હોગે તો જીતને અંતર હોગે અનંત હોગે તો એક સમય મેં કિતની કૃષ્ટિ બની હમને દેખા થા હા 12 સંગ્રહ કૃષ્ટિ બની પરંતુ ટોટલ કૃષ્ટિ કિતની બનતી અપને અપને કષાય મેં તો એક સ્પર્ધક મેં જીતની વર્ગણા હૈ ઉસકે અનંત વિભાગ પ્રમાણ જો અનંત હૈ હમને દેખે ને એક એક કષાય કી તીન તીન સંગ્રહ કૃષ્ટિ ફિર એક એક સંગ્રહ કૃષ્ટિ મેં ભી એ અનંત અનંત કૃષ્ટિ હોતી અભી ઉસકે ગુણકારો કા હમને દેખા થા કલ સ્વરૂપ અભી યહાં પર આયે હમ 12 પ્રેસ પર
તો એક ગુણા
હા એક एक गुणहानी में जो स्पर्धकों की संख्या है जिसको हमने नौ संदृष्टि मानी थी उससे अनंत गुना और एक स्पर्धक में जितनी वर्गणाएं होती है उसके अनंत विभाग। वर्गणा का प्रमाण हमने चार कहा और स्पर्धकों का नौ कहा। वैसे तो नौ से चार अनंत गुणा है पर ये कृष्टियों का प्रमाण इन बिटवीन वाला अनंत है। तो नौ से अनंत गुणा और चार के अनंत विभाग। अब ये इसका जो अंतर यानी गुणकार है उनका अल्पबोध तो यहाँ बताने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे नीचे का सूत्र जो है, लोभस्य पढ़माए संग्रह किट्टिये जहन्नयम किट्टी अंतरम थोवम। लोभ की प्रथम संग्रह कृष्टि का जघन्य अंतर सबसे अल्प है। संग्रह कृष्टि में से जघन्य कृष्टि अंतर का संग्रह कृष्टि की जितनी अवयव कृष्टियां हैं उसमें पहले से दूसरे का अंतर ये इसकी बात चल रही है वो सबसे थोड़ा है। लोभ की इसलिए लिए कि लोभ के सबसे नीचे है, बारह संग्रह कृष्टियों में सबसे नीचे लोभ की है। लोभ में भी नीचे की पहली कहलाएगी और उसमें से सबसे नीचे का जो संग्रह कृष्टि है पहली संग्रह कृष्टि है वो उसमें भी अनंत है। उसमें सबसे पहली अवयव कृष्टि अगर हम चार लेंगे, तीन तो संग्रह पुष्टियां बनी, एक एक में अनंत अनंत पुष्टियां, तो उसमें से सबसे नीचे यानी नीचे से लेंगे तो पुष्टि नंबर एक। तो लोग की प्रथम संग्रह पुष्टि की जघन्य पुष्टि यहां लिखा ना, संग्रह पुष्टि में से जघन्य जिस गुणकार से गुणित करने पर वह अपनी दूसरी पुष्टि के प्रमाण को प्राप्त होती है वह गुणकार जघन्य पुष्टि अंतर संज्ञा वाला होता है, उसको कहेंगे जघन्य पुष्टि अंतर यानी वो सबसे छोटा गुणकार है, वह सबसे स्तोक है। यह उक्त कथन का तात्पर्य भी अनंत है, उसमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद है उससे अनंत गुना सेकंड नंबर की पुष्टि में। ये तो हमने बहुत विस्तार से देखा है, अभी उसी को सूत्रों में फिर दोबारा बता रहे हैं। विधियम किट्टी अंतरम अनंत गुणम, उससे दूसरी कृष्टि का अंतर अनंत गुणा है। अंतर का अर्थ होता है कितने गुणा अविभाग प्रतिच्छेद यानी बिटवीन टू एंड थ्री। यहाँ पर भी दूसरी कृष्टि जिस गुणकार से गुणित होकर तीसरी कृष्टि के प्रमाण को प्राप्त होती है उस गुणकार को द्वितीय कृष्टि अंतर कहते हैं। यानी नीचे से दूसरा अंतर है ना, इसलिए उसको द्वितीय पृष्ठी अंतर कहेंगे। यह गुणकार पूर्व के गुणकार से अनंत गुणा है क्योंकि तत्प्रायोग्य अनंत संख्या से उसके गुणित करने पर इसकी उत्पत्ति होती है। यथा योग्य अनंत गुणा कर दिया, हमेशा जब हम गुणित प्रमाण या असंख्यात प्रमाण असंख्यात गुणित कहते तो वो गुणकार का प्रमाण तो उतना का उतना बढ़ते चले यानी होता है, परंतु यहाँ यह विशेषता है गुणकार भी अनंत गुना बढ़ता चला जाता है। एवं अनंतर अनंतरेन गंतुन चरम किट्टी अंतरम अनंत गुणम। इस प्रकार उत्तरोत्तर यानी आगे आगे अनंतर अनंतर क्रम से जाकर जो अंत में अंतिम कृष्टि प्राप्त होती है उसका अंतर अपनी उपांत्य पुष्टि के अंतर से अनंत गुना है। यहाँ लोभ की प्रथम संग्रह पुष्टि के अवयव पुष्टियों की ही बात चल रही है, अब हम दूसरी संग्रह पुष्टि में नहीं गए हैं। लोभ के पहली संग्रह पुष्टि में जो अनंत पुष्टियां थी उसके अंत तक पहुंच गए। इस प्रकार लोभ की प्रथम संग्रह पुष्टि से संबंध रखने वाली तीसरी और चौथी आदि पुष्टियों का अंतर भी उत्तरोत्तर तदनंतर तदनंतर रूप से अनंत गुणित क्रम से प्राप्त करते हुए अंतिम कृष्टि के अंतर के प्राप्त होने तक यह अल्पबहुत्व जान लेना चाहिए। वहां अंतिम कृष्टि का अंतर ऐसा कहने पर द्विचरम मैंने उपांत सेकंड लास्ट द्विचरम कृष्टि को जिस गुणकार से गुणित करने पर अंतिम कृष्टि का प्रमाण प्राप्त होता है वह गुणकार अंतिम कृष्टि का अंतर है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अंतिम कृष्टि अंतर इसलिए कहा कि इसके बाद वाला जो परस्थान गुणकार होगा। यहाँ सर्वत्र गुणकार तत्प्रायोग्य अनंत संख्या प्रमाण है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अनंत था, वो अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा होते हुए भी उसकी संख्या तो अनंत ही रहेगी। अब कहते लोभस्य चैव विद्याय संग्रह किट्टी है परम किट्टी अंतरम अनंत गुणम। लोभ की ही द्वितीय संग्रह पृष्टि का प्रथम पृष्टि अंतर अनंत गुणा है। यहाँ परस्थान को छोड़ दिया, डायरेक्ट अभी ऊपर के पहले अंतर तक चले गए, ये ख्याल में है ना बात। यहाँ परस्थान की बात ली नहीं, डायरेक्ट अभी दूसरे संग्रह पृष्टि का पहले पृष्टि अंतर, आपको ये बात ख्याल में आ रही है मंजू बेन? हाँ। यहाँ पर प्रथम और द्वितीय संग्रह पृष्ठियों का अंतर रूप परस्थान गुणकार सब अंतर पृष्ठियों के स्वस्थान गुणकारों से अनंत गुण है। सब यानी सभी 12 संग्रह पृष्ठी समाप्त होने पर लास्ट में जो गुणकार होगा उससे भी अनंत गुणा ये पहला परस्थान गुणकार होगा, क्योंकि परस्थान गुणकार भी कितने हैं? 11 है, क्योंकि 12 संग्रह पृष्ठी उसके अंदर 11 अंतर है, उसको संग्रह पृष्ठ अंतर कहेंगे। तो अभी जो हमने पहले संग्रह पृष्ठी का अंतिम गुणकार देखा था उसके ऊपर वाला ये द्वितीय संग्रह पृष्ठी का पहला गुणकार है पृष्ठ अंतर, वो अनंत गुणा। इसलिए देखो फिर पढ़ती है इसको 37 नंबर का पॉइंट। यहाँ पर प्रथम और द्वितीय संग्रह पृष्ठियों का अंतर रूप परस्थान गुणकार सब अंतर पृष्ठियों के स्वस्थान गुणकारों से अनंत गुणा है, इसलिए उसे उल्लंघन करके यानी उसको छोड़ करके दूसरी संग्रह पृष्ठि का प्रथम पृष्ठि अंतर अनंत गुणा है यह कहा। इसलिए दूसरी संग्रह पृष्ठि की प्रथम पृष्ठि जिस गुणकार से गुणित होकर अपनी दृष्टि अपनी दूसरी पृष्ठि को प्राप्त होती है वह गुणकार अनंतर अधस्तन यानी उसके नीचे वाले प्रथम संग्रह पृष्ठि के अंतिम गुणकार से अनंत गुणा है, यह इस सूत्र का अर्थ है। हमने संदृष्टि करके भी देखा था इसमें विशेष अर्थ। यहाँ पर प्रथम संग्रह पृष्ठि और द्वितीय संग्रह पृष्ठि के मध्य जो अंतर है उसको गौण कर प्रथम संग्रह पृष्ठि की जो अंतिम पृष्ठि है उससे दूसरी संग्रह पृष्ठि की दूसरी पृष्ठि का गुणकार ये बराबर नहीं लिखा, पूर्व के गुणकार से भी अनंत गुणा यह स्पष्ट किया है। प्रथम संग्रह पृष्ठि के मध्य जो अंतर है उसको गुण कर प्रथम संग्रह पृष्ठि की जो अंतिम पृष्ठि है नहीं द्वितीय संग्रह पृष्ठि की जो प्रथम पृष्ठि है उससे द्वितीय दूसरी संग्रह पृष्ठि की दूसरी पृष्ठि का गुणकार चाहिए। यहाँ ये इसको बराबर प्रस्तुत नहीं किया है। दूसरी संग्रह पृष्ठि दूसरे ही संग्रह पृष्ठि के प्रथम पृष्ठि से दूसरी संग्रह पृष्ठि का दूसरी पृष्ठि के साथ, क्योंकि प्रथम अंतम पृष्ठि के साथ उसका दूसरे के द्वितीय के साथ कैसे संबंध होगा? उसका तो ऊपर के नीचे के साथ वो तो परस्थान गुणकार होगा, उसकी बात नहीं है। देखो यहाँ पर प्रथम संग्रह पृष्ठि और द्वितीय संग्रह पृष्ठि के मध्य जो अंतर है उसे गौण कर उसको तो गौण कर दिया, अतः प्रथम संग्रह पृष्ठि के अंतिम ये बराबर नहीं है।
उसके बाद लास्ट और सेकंड की कॉस्ट उसमें बहुत अनंत
वो नहीं बताना चाहते, वो तो ऊपर के नीचे के साथ फर्स्ट के साथ उसको तो परस्थान गुण कर कहेंगे।
नहीं नहीं हमने लास्ट पे देखा था ना 8 और 16 और 32 उसमें अनंत गुणा लिखा
देखो हमने हर एक संग्रह पुष्टि के चार चार माननीय पुष्टि, तो एक दो तीन चार पुष्टि पहले तीन अंतर हुए, ये पहला अंतर, ये दूसरा अंतर, ये तीसरा अंतर गुना। अभी उसके ऊपर और संग्रह पुष्टि ऊपर, उसको भी हम तीन अंतर उसके भी अपने अपने कहेंगे। तो ये नंबर चार का, चार की पुष्टि है और ये नंबर पांच की पुष्टि है।
चार से पांच अनंत गुण
है, नहीं वो तो परस्थान गुण का है, यहाँ बात पांच और छह की चल रही है, यानी द्वितीय संग्रह पुष्टि के प्रथम पुष्टि से द्वितीय पुष्टि का अंतर चल रहा है यहाँ। वो यहाँ बिटवीन थ्री और फोर में जो अंतर था, देखो यहाँ कितना था हमने, दो चार आठ और ये सोलह हुआ, इन बिटवीन का ये जो है वो परस्थान है। तो द्वितीय संग्रह पुष्टि के प्रथम पुष्टि और द्वितीय पुष्टि के बीच का ये अंतर चल रहे थे बात। तो यहाँ जो लिखने में कुछ आगे पीछे हुआ है, गौण कर द्वितीय संग्रह पुष्टि की जो प्रथम पुष्टि है, ऐसा करो प्रथम की जगह द्वितीय करना, द्वितीय
क्योंकि ये आठ से सोलह अनंत गुण है ना, दूसरे पृष्ठ की दूसरी, तो
अंतर से अंतर नहीं, पृष्ठी में गुणकार का गुणकार। अच्छा अच्छा गुणकार, गुणकार की बात है, पर प्रथम संग्रह पृष्ठी की अंतिम कृष्टि क्यों कहा, अंतिम अंतिम गुणकार से कह सकते हैं, अंतिम गुणकार से दूसरी संग्रह पृष्ठी के प्रथम पृष्ठि का गुणकार ऐसे है, परंतु तो ये नहीं घटित हो रहा। प्रथम पृष्ठि है उससे
प्रथम पृष्ठि से दूसरी पृष्ठि का गुणकार पूर्व के गुणकार से अलग हो रहा है।
हाँ तो ऐसे मैं जो बता रही बराबर है, द्वितीय संग्रह पृष्ठि की जो अंतिम पृष्ठि सॉरी प्रथम पृष्ठि है,
जो प्रथम लिखा है उसकी जगह द्वितीय लिखो और अंतिम लिखा है उसकी जगह
प्रथम, फिर सेकंड लाइन फिर पढ़ती हूँ, गौण कर द्वितीय संग्रह पृष्ठि की जो प्रथम पृष्ठि है उससे दूसरी संग्रह पृष्ठि की दूसरी पृष्ठि का गुणकार पूर्व के गुणकार से भी अनंत गुणा है। पूर्व का गुणकार हमने आठ माना था और यहाँ पर सोलह हो जाता है, यानी थ्री और फोर के बीच में जो गुणकार था उससे इसकी इसकी कंपेयर हो रही है। आपको लिखना है अभी सेकंड लाइन, उसको गौण कर द्वितीय लिखो या दूसरी लिखो, द्वितीय संग्रह पृष्ठि की जो प्रथम पृष्ठि है, दो जगह चेंज करना है,
दूसरी संग्रह निकल आता है,
नहीं नहीं बराबर है, दूसरी संग्रह पृष्ठि की दूसरी पृष्ठि, यानी द्वितीय संग्रह पृष्ठि में ही पहले पृष्ठि से दूसरी पृष्ठि का अंतर चल रहा है, यानी दूसरी भाषा में कहना है द्वितीय संग्रह पृष्ठि का प्रथम पृष्ठ अंतर प्रथम संग्रह पृष्ठि के अंतिम पृष्ठ अंतर से अनंत बना है। आगे बढ़ेंगे, यह स्पष्ट किया है, विशेषार्थ में कंफ्यूजन हुआ जरा है। इससे आगे दूसरी संग्रह पृष्ठि संबंधी जो उपरिम अनंतर अंतर पृष्ठियां हैं उनका अल्प बहुत्व प्रथम संग्रह पृष्ठि की कही गई विधि के अनुसार तदनंतर तदनंतर क्रम से अनंत गुणित श्रेणी रूप से ले जाना चाहिए, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र आया है। जैसे पहले संग्रह पृष्ठि में एक अंतर से दूसरा अंतर अनंत गुणा यानी गुणकार अनंत गुणा होता गया, द्वितीय संग्रह पृष्ठि में भी पहला जो गुणकार है फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में उसे नेक्स्ट 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 जो होगी आगे वाले जो है वो अनंत गुणा होगी। अभी सूत्र में वही बात बता रहे फिर दोबारा, एवं अनंतर अनंतरेण जाव चरिमादोक्ति अनंत गुणम, इस प्रकार अनंतर तदनंतर क्रम से अंतिम कृष्टि के अंतर के प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर अनंत गुणा अनंत गुणा कृष्टि अंतर जानना चाहिए। कृष्टि अंतर यानी गुण का, क्योंकि उन्होंने उसकी संज्ञा बताई थी पहले से। यह सूत्र गतार्थ है। इससे आगे लोभ संयोजन की दूसरी और तीसरी संग्रह कृष्टियों के परस्थान गुणकार को उल्लंघन करके तीसरी संग्रह पृष्टि की अंतर पृष्टियों के जो अंतर हैं, उन्हें यथाक्रम उत्तरोत्तर अनंत गुणित वृद्धि रूप से ले जाना चाहिए, इस बात का ज्ञान कराते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। लोभस्य चेव तदीयाय संग्रह किट्टीये परम किट्टी अंतरम अनंत गुणम। लोभ की भी तीसरी संग्रह पृष्टि की प्रथम पृष्टि का अंतर अनंत गुण है। इसमें यानी नौ बिटवीन नाइन एंड टेन, हमने पहले एक चार चार पृष्टि मानी नहीं इसमें। इस सूत्र में भी प्रथम कृष्टि का अंतर ऐसा कहने पर प्रथम कृष्टि से दूसरी कृष्टि को उत्पन्न करने के लिए गुणकार ग्रहण करना चाहिए, यही कहता था ना हमने उसमें, यानी तृतीय संग्रह कृष्टि की प्रथम कृष्टि से दूसरी कृष्टि। शेष कथन सुगम है। एवं अनंतर अनंतरेण गंतुन चरिम किट्टी अंतरम अनंत गुणम। इस प्रकार अनंतर तदनंतर क्रम से जाकर अंतिम पृष्टि का अंतर अनंत गुणा है। प्रथम और दूसरी संग्रह पृष्टियों में जिस क्रम से पृष्टि अंतरों का अल्पभूत प्राप्त किया है, उसी क्रम से इस संग्रह पृष्टि का भी ले आना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। यह उक्त कथन का तात्पर्य। विशेषता नहीं है, ऐसे ही वो अनंत गुणित क्रम से पृष्ठ अंतर कहो या गुणकार है वो बढ़ते चला जाए। इसके बाद कौन सी संग्रह पृष्ठ माया की पहली प्रथम कहेंगे उसको। एक तो माया है परम संग्रह किट्टी है, परम किट्टी अंतरम अनंत गुणम। इससे आगे माया की प्रथम संग्रह पृष्ठि की प्रथम पृष्ठि का अंतर अनंत गुणा है। ये परस्थान को छोड़ दिया, यहाँ पर भी परस्थान गुणकार को उल्लंघन कर पहले के समान कथन करना चाहिए। शेष कथन सुगम। अभी समझ में आया ना इसका प्रोसेस। ऐसे ही 12 संग्रह पृष्ठि की अंतिम पृष्ठि तक पहुंचेगी, फिर जाके वो पहला परस्थान गुणकार आएगा। एवं अनंतर अनंतरेण मायावी तिन्नम संग्रह किट्टीनम किट्टी अंतराणी जहा कमेण अनंत गुणाए सेड़िए नेदौवाने। इस प्रकार अनंतर तदनंतर क्रम से माया की तीनों संग्रह पृष्ठियों के पृष्ठि अंतरों को यथाक्रम अनंत गुणित श्रेणी रूप से ले आना चाहिए। श्रेणी क्योंकि वो गुणकार की पंक्ति है ना, एक गुणकार से दूसरा अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा। अब यहाँ तीनों को एक साथ बता दिया, माया की तीनों। लोभ की तीनों संग्रह पुष्टियों की कही गई विधि से अल्पभूत्व का अवधारण करके उसी क्रम से माया संबंधी तीनों ही संग्रह पुष्टियों की अनंत पुष्टियों के यथाक्रम अनंत गुणित श्रेणी रूप से पुष्टि गुणकारों का यह अल्पभूत्व जान लेना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। एक तो मानस्य पढ़माय संग्रह किट्टी है पढ़म किट्टी अंतरम अनंत गुणम। अभी यहाँ भी परस्थान गुणकार को उल्लंघन कर मान के पहले संग्रह कृष्टि के पहला कृष्टि अंतर देखेंगे। इससे आगे मान की प्रथम संग्रह कृष्टि का प्रथम कृष्टि अंतर अनंत गुणा है। यहाँ पर भी पहले के समान परस्थान गुणकार के उल्लंघन द्वारा माया की तीसरी संग्रह पृष्टि के अंतिम अंतर पृष्टि अंतर से मान की प्रथम संग्रह पृष्टि का प्रथम पृष्टि अंतर अनंत गुणा है। अंतिम अंतर पृष्ठि अंतर लिखा ना, अंतिम पृष्ठि अंतर से भी लिख सकते थे। वैसा ही चाहिए, वो अंतर शब्द नहीं चाहिए भाषांतर में कुछ। देखो मैं फिर इसको पढ़ती हूँ। यहाँ पर भी पहले के समान परस्थान के परस्थान गुणकार के उल्लंघन द्वारा माया की तीसरी संग्रह पुष्टि के अंतिम पुष्टि अंतर से, बीच में अंतर एक्स्ट्रा डाला है उन्होंने शब्द जो मूल प्राकृत में भी नहीं था, अंतिम पुष्टि अंतर से यानी अंतिम गुणकार उसका, मान की प्रथम संग्रह पुष्टि का प्रथम पुष्टि अंतर अनंत गुणा है, यह उपदिष्ट किया गया जानना चाहिए। उपदिष्ट ने क्या उपदेशित किया है, हाँ परस्थान को उल्लंघन कर दिया ना, माया की तीसरी का अंतिम और मान की पहले का पहला। ये 16 गुना हुआ या 32 गुना हुआ, 64 गुना हुआ। अभी बिटवीन 8 to 9 उल्लंघन करो तो इसका नंबर क्या है, 9, 10, 11, 12। ये मान की चार हमने मान ली पुष्टि पहले संग्रह, एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, ये लोक की 3 हो जाएगी। ये समझ लो, ये नीचे माया की है समझ लो, और यह मान की चालू हो जाती है। तो माया के जो अंतिम, माया का जो अंतिम गुणकार है उससे मान का पहला गुणकार अनंत गुणकार उसी को पुष्टि अंतर का। अवयव पुष्टियों के बीच जो गुणकार है उसी को पुष्टि अंतर का, और परस्थान गुणकार को संग्रह पुष्टि अंतर का। ये 44 हमने पढ़ लिया, अभी आगे मानस से भी तिन्नम संग किट्टिनम अंतराणी जहां कमेन अनंत गुणाए सेढ़िये नेदव वाणी। मान की भी तीनों संग्रह पुष्टियों का अंतर यानी पुष्टि अंतर अंदर वाला परस्थान नहीं, यथाक्रम अनंत गुणित श्रेणी रूप से ले जाना चाहिए। मान की भी तीनों संग्रह पुष्टियों को पृथक पृथक रोक कर प्रकृत अल्पभूतव ले जाना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी प्रत्येक संग्रह पुष्टि में इसी क्रम से अनंत गुणा गुणकार होगा। एक तो कोदस्य पड़म संग्रह किट्टी है, पड़म किट्टी अंतरम अनंत गुणा में, इससे आगे यानी भी मान की अंतिम संग्रह पुष्टि का अंतिम पुष्टि अंतर, उससे लोक की प्रथम संग्रह पुष्टि का प्रथम पुष्टि अंतर, क्रोध क्रोध की प्रथम संग्रह पुष्टि का प्रथम पुष्टि अंतर अनंत गुण। वही कहते इससे आगे क्रोध की प्रथम संग्रह पुष्टि का प्रथम पुष्टि अंतर अनंत गुण है, यह सूत्र सुगम है। कोहस्य वि तिन्नम संग्रह किट्टिनम अंतराणि जहां कमेन जाव चरिमादो अंतरादो ती अनंत गुणाए सेड़िये नेदववाणी। क्रोध की भी तीनों संग्रह पुष्टियों का अंतर यानी एक एक संग्रह पुष्टियों के जो पुष्टियां है उसके आपस में जो जिसको हम पुष्टि अंतर कहते हैं, यथाक्रम अंतिम पुष्टि अंतर के प्राप्त होने तक यानी एकदम लास्ट वाला अंतिम संग्रह पुष्टि का अंतिम पुष्टि अंतर अनंत गुणित श्रेणी रूप से ले जाना चाहिए।
पुष्टि अंतर
संग्रह पुष्टियों के बीच, ऊपर भी ऐसी भाषा आई थी उसका भी वैसे ही अर्थ किया था उन्होंने। ये पुष्टि अंतर नहीं, संग्रह पुष्टियों के अंदर पुष्टि अंतरों की बात चल रही है। देखो हम आए 16 पेज पर, क्रोध की तीसरी संग्रह पुष्टि की द्विचरम पुष्टि जिस गुणकार से गुणित होकर वहां की अंतिम पुष्टि के प्रमाण को प्राप्त होती है, वह सब अंतिम पुष्टि अंतर को, यह अंतिम पुष्टि अंतर है ना, सबसे अंतिम मर्यादा करके यह अल्पभूत जान लेना चाहिए। यह सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है, यानी ये परस्थान गुणकारों को हम अलग ही रखेंगे और बाकी सभी कृष्टि एक के ऊपर एक रचेंगे, तो सारे ही गुणकार है वो अनंत गुणित क्रम से चले जाते ऊपर के। कहे गए ये सब गुणकार 12 संग्रह पुष्टि संबंधी अंतर पुष्टियों में प्रवृत्त होते हुए स्वस्थान गुणकार कहलाते हैं। विशेषार्थ, गुणकार के स्वस्थान गुणकार और परस्थान गुणकार ये दो भेद पहले ही कहे आए हैं, उनमें से यहाँ तक स्वस्थान गुणकार की अपेक्षा अंतर पुष्टियों के अंतरों को प्राप्त किया गया है। अंतर पुष्टियों का अंतर है अंतर पुष्टि, अवय पुष्टि को अवय अंतर पुष्टि भी कहते हैं। तो अंतर पुष्टियों के अंतरों को, यानी ये जो स्वस्थान गुणकारों को प्राप्त किया गया है, आशय यह है कि उत्तरोत्तर अगली अगली पुष्टि के प्रमाण को प्राप्त करने के लिए, अगले यानी नेक्स्ट स्वस्थान गुणकार का प्रमाण उत्तरोत्तर अनंत गुणा होता जाता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक पुष्टि में अनुभाग शक्ति रूप अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते जाते हैं। अनंत गुणा किसका प्रमाण है, तो अविभाग प्रतिच्छेद, क्योंकि परमाणु तो ऊपर घटते चले जाएंगे। इससे आगे परस्थान गुणकार संज्ञा वाले संग्रह पृष्टि अंतर, वो पहले वाला जो अवयव पृष्टि अंतर था या अंतर पृष्टि अंतर था, अब इसको संग्रह पृष्टि अंतर कहेंगे, तो इसी का नाम है परस्थान गुणकार। तो ये परस्थान गुणकार संज्ञा वाले संग्रह पृष्टि अंतरों के अल्प बहुत्व का क्रम से अवधारण करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया है। तदो उससे, किससे, जो हमने अंतिम पृष्ठ अंतर देखा था, क्रोध के अंतिम संग्रह पृष्ठि का अंतिम पृष्ठ अंतर देखा था अवयव पृष्ठियों का, उससे ये एक नंबर का प्रस्थान गुणकार है वो अनंत गुणा है। वो तो किसके किसके बीच में है, लोभ की पहले और सेकंड में। तदो लोभस्य परम संग्रह किट्टी अंतरम अनंत गुणम, उससे लोभ की प्रथम संग्रह पृष्ठि का अंतर अनंत गुणा है, यानी प्रथम संग्रह पृष्ठि अंतर जिसको कहेंगे। लोभ की प्रथम संग्रह पृष्ठि जिस गुणकार से गुणित होकर दूसरी संग्रह पृष्ठियों की प्रथम पृष्ठि को प्राप्त होती है, यानी प्रथम संग्रह पृष्ठि की अंतिम पृष्ठि और दूसरे संग्रह पृष्ठि की प्रथम पृष्ठि, इन बिटवीन जो गुणकार है जिसको हमने प्रथम परस्थान गुणकार कहा, उस गुणकार की लोभ की प्रथम संग्रह पृष्ठि अंतर संज्ञा है, यानी पृष्ठि अंतर है ना, संग्रह पृष्ठि अंतर, ये एक शब्द होगा तो और सरल होगा, उसको प्रथम संग्रह पृष्ठि अंतर कहेंगे। यह गुणकार स्वस्थान गुणकारों के अंतिम गुणकार के से अनंत गुणा, जो हमने क्रोध में अंतिम गुणकार देखा था उससे यह पहला नंबर का परस्थान गुणकार अनंत गुणा है। परस्थान गुणकार के महात्म्यवश इसी गुणकार विशेष का अवलंबन लेकर एक एक कषाय की तीन तीन संग्रह पुष्टियां कही गई है। ये तीन तीन संग्रह पुष्टियां क्यों कही, एक ही पूरा इतनी पुष्टि बनी ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये परस्थान गुणकार बहुत अधिक प्रमाण वाला है, तो दो संग्रह पुष्टियों के बीच में इतना गुणकार का डिफरेंस है इसलिए उसके तीन ग्रुप बनाए, नहीं तो अनंत गुणा तो चल ही रहा था। अन्यथा संग्रह पृष्ठियों का विशेष विभाग नहीं बन सकता। ये विभाग इसी पॉइंट पर बना है कि वो गुणकार इन बिटवीन गुणकार अनंत गुणा है। यहाँ पर अधस्संग पृष्ठी को उपरिम पृष्ठियों में से घटाकर जो शेष रहता है उससे एक कम अविभाग प्रतिच्छेदों को उत्तर क्रम वृद्धि के बिना अक्रम से वृद्धि हुई है। क्या कहते हैं फिर से दोबारा, यहाँ पर अधस्तन कृष्टि को उपरिम कृष्टियों में से घटाकर जो शेष रहता है उससे एक कम अविभाग प्रतिच्छेदों की उत्तर क्रम बुद्धि के बिना अक्रम से वृद्धि हुई है। अधस्सन कृष्टि को उपरिम कृष्टियों में से घटाकर जो शेष रहता है उससे एक कम विभाग प्रतिच्छेदों की उत्तर क्रम वृद्धि के बिना अक्रम से वृद्धि हुई है। यानी अविभाग प्रतिच्छेदों की जो वृद्धि है वो क्रम रूप वृद्धि नहीं, वो अक्रम रूप हो गई इन बिटवीन या परस्थान गुणकार का। यहाँ वो अनंत गुणा वाला डिफरेंस यहाँ नहीं है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। शंका, यहाँ पर पुष्टि अंतर क्यों नहीं ग्रहण किया जाता, वही स्वस्थान गुणकार क्यों नहीं ग्रहण करते, ये प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि वैसा ग्रहण करने पर पूर्वोक्त अंतिम स्वस्थान पुष्टि अंतर से इस संग्रह पुष्टि अंतर के अनंत गुणी हीन होने का प्रसंग प्राप्त होता है। यदि हम स्वस्थान गुणकार जैसा ही अगर यहाँ मानेंगे तो अंतिम तक अनंत गुणा हो गया, फिर इसका नंबर आया था। अगर इसको पहले ही वैसा मानेंगे तो अंतिम गुणकार से अनंत गुणाहीन कहलाएगा, परंतु वो पहले बता चुके हैं सभी स्वस्थान गुणकारों से ये पहला परस्थान गुणकार भी अनंत गुणा है। वह कैसे, तो कहते हैं लोभ की प्रथम संग्रह पृष्ठी की अंतिम पृष्ठि को उसी की द्वितीय संग्रह पृष्ठि की प्रथम पृष्ठि में से घटा देने पर जो शेष रहता है वह एक कम वह लोभ की प्रथम संग्रह पृष्ठि का अंतर होता है। लोभ की प्रथम संग्रह पृष्ठि की अंतिम पृष्ठि को उसी की द्वितीय संग्रह पृष्ठि की प्रथम पृष्ठि में से घटा देने पर जो शेष रहता है, जो अनुभाग शेष रहा ना यहाँ पर, घटा देने पर लिखा है, एक कम वह लोभ की प्रथम संग्रह पृष्ठि का अंतर होता है। इसका अर्थ नहीं मुझे समझ में आया, ऊपर क्या लिखा है, लोभस्य परम संग किट्टिये तस्यैव विद्य संग किट्टिये परम किट्टिदो सोहिय शुद्ध शेषम रूणम लोभस्य परम संग किट्टि अंतरम नाम होती। आगे पढ़ेंगे शायद आगे ये उसका उत्तर आएगा। अब दूसरी संग्रह पृष्टि की प्रथम संग्रह पृष्टि को उसी की दूसरी पृष्टि में से घटा देने पर जो राशि शेष रहती है एक कम वह राशि पूर्वोक्त संग्रह पृष्टि के अंतर निमित्त रूप शुद्ध शेष राशि से अनंत गुणी होती है। इसलिए इतने प्रमाण रूप राशि अविभाग प्रतिच्छेदों की उत्तर क्रमबुद्धि के बिना अक्रम से बड़ी है। इसलिए प्रथम और दूसरी पृष्टियों का यह अंतर हो गया है और ऐसा होने पर पूर्व संग्रह पृष्टि अंतर से यह पृष्टि अंतर अनंत गुणा हो गया है। परंतु ऐसा सूत्र में कहा नहीं है क्योंकि इससे क्रोध को क्रोध की चाहिए क्रोध की ये दिख नहीं रहा है बराबर अनंत गुणी तीसरी संग्रह पृष्टि संबंधी अंतिम पृष्टि अंतर से भी लोक की प्रथम पृष्टि का अंतर अनंत गुणा है ऐसा इस सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। इसी प्रकार शेष संग्रह पृष्ठियों के अंतर के भी पृष्टि अंतर से अनंत गुणे हीन होने का प्रसंग प्राप्त होता है ऐसा यहाँ दिखलाना चाहिए। इससे हम जानते हैं कि पृष्टि अंतर ऐसा कहने पर पृष्टि गुणकार ही सर्वत्र गणना चाहिए परंतु अधस्तन पृष्टि को उपरिम पृष्टि में से घटाकर जो शेष रहे वह नहीं। ओ पृष्टि का पृष्टि अंतर का अर्थ है उसका गुणकार ही लेना है उसका डिफरेंस नहीं ये बात बतानी चाहिए। ये समाधान में ले लिया यहाँ ये बात बता रहे हैं यहाँ गुणकार की बात है जो हमने देखा था ना अब यहाँ आठ है और यहाँ गुणकार सोलह हो गया दो गुना हो गया ना उससे ऊपर का बत्तीस यानी दो गुना हुआ उससे ऊपर चौसठ यानी दो गुना हो गया। पृष्टि अंतर अंतर किसको कहते हैं डिफरेंस को बत्तीस और सोलह में कितना डिफरेंस है तो यहाँ क्या कहा ऊपर के अधस्म पृष्टि को उपरीतन पृष्टि में से घटाकर जो शेष रहता है सोलह रहेगी ना उससे एक कम की वृद्धि हुई उसमें कितने की वृद्धि हुई उसकी बात चल रही है
सोलह
सोलह में से देखो अधसन पृष्टि को उपरिम पृष्ठियों में से घटाकर जो शेष रहता है उससे एक कम अविभाग प्रतिच्छेदों की उत्तर क्रम वृद्धि के बिना अक्रम से वृद्धि हुई है। तो यहाँ कहते हैं कि पृष्टि अंतर को क्यों नहीं ग्रहण किया गया यानी वो एक जैसी क्रम वृद्धि नहीं है ये क्रम वृद्धि नहीं है अक्रम वृद्धि ये कहना चाहते हैं। उतनी की उतनी वृद्धि होती गई तो हम उसको क्रम वृद्धि कहेंगे। जैसे अगर हम परमाणु की संख्या देखेंगे तो क्या हो रहा है क्रम वृद्धि या क्रम हानि कहेंगे हम उसको वो चाहे डिफरेंस हो बराबर इतना ही है परंतु यह अविभाग प्रतिच्छेद यहाँ जितना बढ़ा उससे अनंत गुणा यहाँ बढ़ा इसके और इसके बीच में मान लेते दो गुना बढ़ा तो इसके और इसके बीच में चार गुना बढ़ा गुणकार में भी अनंत गुना का डिफरेंस है। यदि दो गुना दो गुना दो गुना ही बढ़ता अभी यहाँ सौ था ये दो गुना नहीं 200 हुआ फिर 400 हुआ, फिर 800। तो यहाँ तो दो में तो समझ में आता है, परंतु वहाँ अनंत गुण, गुणकार भी अनंत गुण पर, ये कहना चाह रहे यानी केवल दो गुना नहीं बढ़ रहा, यहाँ दो गुना का है, यहाँ चार गुना, यानी 200 से 800 हो गए, यहाँ 400 नहीं हुआ, यहाँ 8 गुना बढ़ा है, 8 गुना यानी 8×8=6400 हुआ है, ये डिफरेंस है। यदि 100, 200, 400, 800 होता तो वो तो क्रम वृद्धि हुई, अभी अक्रम हुई। उसको उन्होंने सब अक्रम ही है, देखो अदर्शन कृष्टि को उपरिम कृष्टियों में से घटाकर लिखा, उन्होंने कृष्टि अंतर यानी केवल डिफरेंस नहीं समझना है, वो गुणकार ही ले लेना है,
परंतु अदर्शन कृष्टि को कृष्टि से घटाकर जो शेष है
वो नहीं है, वो अंतर ये यहाँ 100 बढ़े और यहाँ 600 बढ़े और यहाँ 64 में से 8 कम या 5600 बढ़े, ऐसा नहीं है, तो ये गुणकार रूप से बढ़े है, ये कहना है, ये समाधान ही कंटिन्यू है, वो समाधान के लिए ये बात फिर उन्होंने दोबारा समझाई है। हाँ अभी आगे पढ़ेंगे। द्वितीय संग किट्टी अंतरम अनंत गुण, पहला परस्थान गुणकार अंतिम संग्रह कृष्टि अंतिम संग्रह कृष्टि के अंतिम कृष्टि अंतर से अनंत गुणात, यानी अंतिम स्वस्थान गुणकार से ही अनंत गुणात। अब कहते हैं दूसरी संग्रह कृष्टि का अंतर अनंत गुणा, यानी सेकंड नंबर का परस्थान गुणकार, दूसरी संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि जिस गुणकार से गुणित होकर तीसरी संग्रह कृष्टि की प्रथम कृष्टि को प्राप्त होती है, वह गुणकार द्वितीय संग्रह कृष्टि का अंतर है, यह प्रथम संग्रह कृष्टि अंतर से अनंत गुणा है। तो कहते गुणकार क्या है, उसका समाधान तत्प्रायोगी अनंत संख्या गुणकार, क्योंकि पूर्व गुणकार से अनंत गुणित हो गया है। तदीय संग्रह किट्टी अंतरम अनंत गुणम, उससे तीसरी संग्रह कृष्टि का अंतर अनंत गुणा है, यानी तीन नंबर का परस्थान गुणकार। शंका, यहाँ पर शंकाकार कहता है कि इत्थ चौदगो भणई, चौदगो का अर्थ क्या है, तदीय संग्रह किट्टी अंतरम ऐसा कहने पर यहाँ किस अंतर का ग्रहण करना चाहिए, क्या लोभ की तीसरी संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि से उसी के अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गना में प्रविष्ट होने वाला गुणकार ग्रहण करते हैं, या लोभ की तीसरी संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि से माया संज्वलन की प्रथम संग्रह कृष्टि के आदि में प्रविष्ट होने वाला गुणकार ग्रहण करते हैं, क्या प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, और फिर उसके आगे भी पढ़ेंगे। तो ये हमारे यहाँ हमने क्या बताई थी, 12 संग्रह कृष्टियां एक के नीचे एक बताई, तो 12 संग्रह कृष्टियां क्रोध के अपने में हुई है, क्रोध के अपने अपूर्व स्पर्धक, हरेक के अपने अपने अपूर्व स्पर्धक थे पहले, तो क्रोध की तीन संग्रह कृष्टियां बनी, मान की तीन बनी, माया की तीन बनी और लोभ की तीन बनी। तो लोभ का तृतीय संग्रह कृष्टि अंतर ऐसा कहने पर क्या लोभ की तीसरी संग्रह कृष्टि से उसी के अपूर्व स्पर्धक का गुणकार समझना, कि इससे इसका गुणकार समझना, ये प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न पूछने में वो आगे बताएगा दोनों ऑप्शन घटित नहीं होते, बहुत बड़ी है ना शंका। क्या कहते हैं फिर से शुरू से, शंकाकार कहता है कि तदीय संग्रह किट्टी अंतरम, इतना लिखा है तृतीय संग्रह पृष्ठांतर कहने पर यहाँ किस अंतर का ग्रहण करना चाहिए? क्या लोभ की तीसरी संग्रह पृष्ठी की अंतिम पृष्ठि से उसी के अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गणा में प्रविष्ट होने वाला गुणकार ग्रहण करते हैं, या लोभ की तीसरी संग्रह पृष्ठी की अंतिम पृष्ठि से माया संज्वलन की प्रथम संग्रह पृष्ठि के आदि में प्रविष्ट होने वाला गुणकार ग्रहण करते हैं? दो ऑप्शन कौन से पूछ रहे? यहाँ से इसका या इस यहाँ से माया का पहला, इसमें से कौन सा? हमने तो पहले देखा था बारह संग्रह पृष्ठियों में से वो ग्यारह जो अंतर है संग्रह पृष्ठियों के उसको लिया था, पर इसका प्रश्न पूछने का तरीका कुछ और दिखता है क्योंकि अभी आगे उसका प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। तो कहते हैं उन दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है, क्योंकि संग्रह पृष्ठियों के अंतरों के अल्प बहुतों के कहने पर संग्रह पृष्ठी और स्पर्धक अंतर संबंधी गुणकार प्रवेश नहीं बन सकता, क्योंकि संग्रह पृष्ठि अंतर कह रहे हैं तो उसमें तो स्पर्धक और संग्रह पृष्ठि का अंतर तो यहाँ नहीं हो सकता। किसी भी संबंधवश गुणकार का प्रवेश भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। यदि ऐसा व्याख्यान किया जाता है तो भी इससे आगे लोभ और माया का अंतर अनंत गुना है, इस प्रकार आगे कहा जाने वाला सूत्र नहीं बन सकता, क्योंकि पृष्ठी और स्पर्धक संबंधी अंतर से तीसरी संग्रह पृष्ठी का अंतर अनंत गुना हीन है, क्योंकि पृष्ठी और स्पर्धक में जो अंतर होगा वो तो बहुत बड़ा गुणकार होगा। इसलिए तीसरी संग्रह पृष्ठी और स्पर्धक के अंतर से उसके अनंत गुणा होने में विरोध आता है, तथा दूसरा पक्ष भी घटित नहीं होता। अब कहते ये माया वाला भी नहीं घटित होगा, पहले तो उसने छल मान लिया, क्योंकि लोक की अंतिम संग्रह पृष्ठि और माया की प्रथम संग्रह पृष्ठि का अंतर तीसरी संग्रह पृष्ठि का अंतर है, इस कारण यहाँ पर उसके निर्देश का अवलंबन करने पर उपरिम सूत्र स्पष्ट रूप से उस विषय से संबंध रखता है, इसलिए इस कथन में पुनरुक्त दोष का प्रसंग आता है। इसलिए विषय शून्य होने से इस सूत्र का आरंभ नहीं करना चाहिए। ये लंबा चौड़ा क्यों कहते हैं? एक सूत्र कहने का प्रयोजन क्या है? बिना प्रयोजन का ये होता है तो इसको विषय नहीं है, पुनरुक्त पने का दोष आता है। समाधान, यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। लोभस्य तदीय संग्रह किट्टी अंतरम ऐसा कहने पर लोभ की दूसरी संग्रह पृष्ठि की अंतिम पृष्ठि जिस गुणकार से गुणित होकर लोभ की तीसरी संग्रह पृष्ठि की अंतिम पृष्ठि को प्राप्त करती है वह गुणकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त दूसरी संग्रह पृष्ठि के अंतर से स्पष्ट रूप से यह अंतर अनंत गुणा देखा जाता है। यहाँ पर गुणकार क्या है? तीसरी संग्रह पृष्ठि में प्रविष्ट हुए समस्त स्वस्थान गुणकारों के परस्पर गुणा करने पर जो लब्ध आवे वह यहाँ पर गुणकार है।
ये
कुछ अलग बात,
ये लोक की दूसरी संग्रह पृष्ठि की अंतिम पृष्ठि उसको जिस गुणकार गुणकार से गुणित होकर लोक की तीसरी संग्रह पृष्ठि की अंतिम पृष्ठि को प्राप्त करती है, ये तो लोक की दूसरी संग्रह पृष्ठि की अंतिम पृष्ठि से लोक की तीसरी संग्रह पृष्ठि की।
मैं जरा पढ़ती हूँ, फिर पीछे के पेज पर जाएंगे हम। द्वितीय संग्रह पृष्ठि का अंतर अनंत गुणा है, 51 नंबर का पॉइंट फिर पढ़ रही हूँ मैं। दूसरी संग्रह पृष्ठि की अंतिम पृष्ठि जिस गुणकार से गुणित होकर तीसरी संग्रह पृष्ठि की प्रथम पृष्ठि को प्राप्त होती है वह गुणकार द्वितीय संग्रह पृष्ठि का अंतर है। यह प्रथम संग्रह पृष्ठि अंतर से अनंत गुणा है, ये तो हो गया ना। उसके बाद बताते हैं उससे तीसरी संग्रह पृष्ठि का अंतर अनंत गुना है। अब उसका समाधान क्या कहा? 18 पेज पर नीचे से दूसरा जो समाधान लिखा है कि लोभस्य तदीय संग्रह किट्टी अंतरम ऐसा कहने पर लोभ की दूसरी संग्रह पृष्ठि की अंतिम पृष्ठि ये तो इसको द्वितीय कृष्टि संग्रह कृष्टि अंतर कहा था। ऐसा कि लोक की दूसरी संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि जिस गुणकार से गुणित होकर लोक की ही तीसरी संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि को प्राप्त होती है वह गुणकार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त दूसरी संग्रह कृष्टि के अंतर से स्पष्ट रूप से यह अंतर अनंत गुणा देखा जाता है। ओहो, ये क्या कहना चाहते, कुछ अलग ही बात है। देखो देखो, हम ये 12 संग्रह कृष्टियों की बात करेंगे। लोक की हमने देखे थे, चार चार ली थी हमने, पहला गुणकार 2, 4 और 8 था, यहाँ पर 16, 32 और 64 था, 128, 256, 512 था। अब यहाँ तो कह दिया वो लास्ट वाला था, उससे ही अनंत गुणा ही बता दिया इन बिटवीन। अभी सुनो, 512 सुनो तो सही। मैं क्या, ये पढ़कर मुझे जितना भाषित हुआ है मैं बता रही हूँ। ये कहते हैं इस द्वितीय संग्रह कृष्टि की अंत और उससे तृतीय संग्रह कृष्टि के अंतिम कृष्टियों में जो गुणकार है, तो कहते पहले से दूसरा 128 गुना, दूसरे से 256 गुना, तीसरे से चौथा 512 गुना। तो डायरेक्ट पहले से ये कितना गुना होगा, तो इनका इनको आपस में उस पर टोटल करनी पड़ेगी। अब कहते हैं द्वितीय संग्रह पुष्टि की जो अंतिम पुष्टि है उससे तृतीय संग्रह पुष्टि की अंतिम पुष्टि कितने गुना है, तो उसमें परस्थान भी इंक्लूड हो गया, ये भी ये भी ये भी सब गुणकार इंक्लूड हो गए, तो कहते वो उससे अनंत गुना है। इससे डायरेक्ट ये कितने गुना है ये पूछ रहे हैं, दूसरे इसके अंतिम से तीसरे के अंतिम कितने गुना ये पूछ रहे हैं। अभी ये क्या बताना चाहते वो मैं आपको कह दूंगा, इसका अर्थ क्या होता है ये भाषित होता है, ये भाषित होता है। पहले भी उन्होंने इसी के बारे में कुछ बताया था, ये जो एज कम करना वगैरह की तो कुछ बात हुई थी ना। नहीं, मैं 16 पेज पर पढ़ रही हूँ। ऐसा कुछ है उन गुणकारों का टोटल करके कुछ ऐसी कुछ बात थी वहां पर। हाँ ठीक है, हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे, और ये बातें हम थोड़ा पढ़ते जाएंगे ना तो शायद उसकी वृत्ति सुलझ जाएगी। यहाँ क्या कहना चाहते उसकी उसका अर्थ ग्रहण करते करते हम आगे बढ़ेंगे। क्या कहा यहाँ पर, फिर पढ़ेंगे ये समाधान। सेकंड लाइन, लोक की दूसरी संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि जिस गुणकार से गुणित होकर लोक की ही तीसरी संग्रह कृष्टि की अंतिम कृष्टि को प्राप्त होती है, यानी द्वितीय संग्रह कृष्टि के अंत से तृतीय संग्रह कृष्टि का अंत, वह गुणकार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त दूसरी संग्रह कृष्टि के अंतर से स्पष्ट रूप से यह अंतर अनंत गुणा देखा जाता है। तो कहते यहाँ पर गुणकार क्या है, तो तीसरी संग्रह कृष्टि में प्रविष्ट हुए समस्त स्वस्थान गुणकारों के परस्पर गुणा करने पर जो लब्धा है वह यहाँ पर गुणकार है। क्या कहते हैं ये कितना गुणकार है, इससे ये और इससे डायरेक्ट ये कितने गुणा है, तो इन बिटवीन 128 गुना, 256 गुना, 512 इन गुणकारों को गुणकार करने से उसमें वो बात आ गई, ये इससे उतने गुणा है। यह तो अनुक्त शंकर, यह तो अनुक्त सिद्ध है, इसलिए यहाँ पर उसका कथन नहीं करना चाहिए। तो ये बताने की क्या जरूरत है, नहीं बताते हुए भी ये सिद्ध ही है ना। क्या कहना चाहते हैं, जैसे इससे दो गुना है, यहाँ का गुणकार चार है, इससे इसका गुणकार आठ है, तो डायरेक्ट किसका इसके बीच में क्या गुणकार होगा। हम संख्या लेते ना, मान लेते ओरिजिनल संख्या यहाँ 100 थी, यहाँ गुणकार होकर 200 हो गई, ये कृष्टि का इसका गुणकार हो चार गुना हुई ना, 200 को चार गुना 800 हो गई, और यहाँ 8 गुना 6400 हो गई। तो कहते हैं ये 100 से कितने गुना हुआ, 64 गुना। क्या किया, ये तीनों गुणकारों का आपस में गुणकार किया, 2 गुना 4 गुना 8, 8 32 64, तो 64 गुना हुआ। यही बात बताना चाहते हैं
हम। यहाँ पे हम लोग की बात कर सकते हैं,
अभी ये बीच में इनको लिया है, शायद और भी उसके कुछ कंपेयर करना चाहते होंगे। यहाँ एक एक शब्द का अर्थ क्या है हमको समझ के हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे जाकर ये मैंने बोला ना, आगे जाकर इसकी वृत्ति सुलझेगी। ये क्या कहना चाहते समझ में आई बात। अब इस गुणकार से ये बीच वाला अनंत गुना था, ये अनंत गुना अनंत गुना, ये परस्थान गुणकार को भूल भी जाओ, तो कहते ये जो यहाँ पर गुणकार, अभी ये जो पृष्टि है इसका प्रमाण 6400 है। अभी समझने के लिए वो आगे वाले 100-100 अगर निकाल भी देंगे, हम एक से शुरू करेंगे, 64 मान लेते यहाँ का, तो ये 16 गुना हुआ इसके बीच में, बीच वाला छोड़ दो ना, तो ये 64 था, तो उससे ये नहीं लेना, ये ऊपर की लेना, ये तो बीच में परस्थान हो जाएगा। परस्थान को लेकर भी अगर ऊपर चढ़ेंगे वो कितना होगा, तो सबका जितना था उसका सब मिलकर यहाँ था, और फिर उससे ये इसका प्रमाण आएगा, परस्थान से इसका प्रमाण आएगा, 64 को इतना गुणा करके इससे कोई एक्स आएगा यहाँ पर, तो इस एक्स को यहाँ 16x हो जाएगी, ये 16 को 32 से गुणा करना, इतने एक्स यहाँ होंगे,
16x 32,
हाँ इतने होंगे ना, यहाँ एक्स हो गए, यहाँ 16x हुए, यहाँ 16x 32 हुए, यहाँ 16x 32 गुना 64x हो गए, इतने हो गए। तो यहाँ से ये कितने गुना, ये बात बता, वो भी अनंत गुना है, इतनी बात है। ये एक परस्थान उसके अंदर इंक्लूड कर दिया उन्होंने, आगे वाला जो परस्थान है उसके बाद लोग और माया के बिटवीन वाला लिया ही नहीं अभी तक, ये दूसरी संग्रह कृष्टि का अंतिम और तीसरी संग्रह कृष्टि का अंतिम, इन बिटवीन गुणकार लेंगे,
दूसरी की अंतिम और तीसरी की अंतिम में जो परस्थान गुणकार है उनको सभी आते हैं।
अभी सुनो ये क्या कहना चाहते हैं, वो तो सुनो पहले, यहाँ क्या हो रहा है, उस किस गुणकार की बात हो रही है उसकी बात है। परस्थान को कहाँ उन्होंने छोड़ा है, आगे वाला परस्थान उसे भी अनंत गुना बताएंगे वो, ये इन बिटवीन की बात चल रही है, दूसरे संग्रह कृष्टि के अंतिम से तीसरे संग्रह कृष्टि के अंतिम गुणकार यहाँ सिद्ध कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। वो दूसरे प्रस्थान का क्या होगा तो उनको चिंता है ना, वो बताएंगे आगे। ये उस परस्थान के दूसरे नंबर के परस्थान से इन बिटवीन या एक बता दिया उन्होंने, एक इन बिटवीन पढ़ा उन्होंने बता दिया कि उससे भी वो परस्थान और अनंत गुना होगा, उसके बाद तो बाद में करेंगे। अभी ये पहला एक स्टेप बीच में बता रहे हैं, दूसरे संग्रह कृष्टि का अंतिम और तीसरी संग्रह कृष्टि का अंतिम, इसके इन बिटवीन क्या है उसको बता दिया। करना कैसे कैसे करेंगे, यहाँ का परस्थान कितना था, अपने पुस्तक निकालो ना, अरे वही पेज निकालो, 382। पहला परस्थान 32 गुना बादल था, यहाँ वाला टोटल उन्होंने कैलकुलेट किया था, हम बादल के लिए बा लिखेंगे, यहाँ 32 बादल है, 32 बा और यहाँ 64 बा हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहा था, ये सारे स्वस्थान समाप्त होने पर ये 32 बा हुआ और यहाँ 64 बा हुआ। अब कहते यहाँ का जो गुणकार, यहाँ का जो गुणकार था ना, ये यहाँ की कृष्टि की बात है, यहाँ की कृष्टि से यहाँ की कृष्टि कितने गुना है ये बात चल रही है। इसके आगे वाला लोभ और माया के बीच वाला जो है वो 128 बादल आने वाला है, संख्या यहाँ 128 बादल आ जाएगी, ये तो नक्की है, उस तक अभी पहुंचे नहीं है। तो उसके पहले ये इन बिटवीन, ये जो यहाँ का जो कुछ कृष्टि का प्रमाण है, एक्स, ये कृष्टि का एक्स प्रमाण है, यहाँ एक्स को 64 बादल से गुना करेंगे तो ये पहली कृष्टि का प्रमाण आएगा, यहाँ पर उसको 128 से गुना करेंगे, फिर 256 से 512 से, यानी इन तीनों गुणकारों को आपस में गुणाकार करना है और उससे इसको भी गुणाकार करना, तो ये आगे वाला आ जाएगी बात। तो वही बात यहाँ बता रहे हैं, देखो तीसरी यहाँ 18 में लास्ट में क्या बताया था, तीसरी संग्रह कृष्टि में प्रविष्ट हुए समस्त स्वस्थान गुणकारों के परस्पर गुणा करने पर जो लब्ध हुए वह यहाँ पर गुणकार है। यानी ये तीन गुणकारों का परस्पर गुणकार करने पर जो है उसी की बात है, यहाँ परस्थान गुणकार को नहीं लिया बीच में, इन तीनों का जो आपस में गुणकार है 128 गुणा 256 गुणा 512 उसकी बात है यहाँ पर। अभी यहाँ पर आए 19 पेज पर, तो कहते उसका यहाँ पर कथन नहीं करना चाहिए था, कहते नहीं क्योंकि लोभ और माया के अंतर के महात्म्य के दिखाने के लिए इसका निर्देश करने पर सफलता उत्पन्न होती है। थोड़ा हम रुकेंगे तो आगे उसका उत्तर आने वाला है। ये तो केवल तीसरी संग्रह पुष्टि के सभी गुणकारों का गुणकार करने पर भी, यानी यहाँ के स्वस्थान गुणकारों का गुणकार करने पर भी, पहले परस्थान से दूसरा, दूसरे से तीसरा जो स्वस्थान गुणकार है वो बहुत बड़ा है ये बताना, इतने ही इनका प्रयोजन। तो तीसरी संग्रह पुष्टि के अंदर जो सारे स्वस्थान गुणकार थे उनका परस्पर गुणकार किया, उससे भी ये वाला परस्थान गुणकार जो लोभ और माया में है वो अनंत गुना है, इतनी बात बता रहे। तो कहते वह कैसे, ये समाधान 19 पेज पर दूसरा समाधान, लोभ की दूसरी संग्रह पुष्टि के अंतर से स्वस्थान गुणकारों के परस्पर गुणा करने पर जो लब्ध आवे उसकी अपेक्षा भी यह तीसरी संग्रह पुष्टि का अंतर अनंत गुना है। पुनः इससे भी लोभ और माया का अंतर अनंत गुना है, आई ना बात, हमें चिंता इसकी चल रही थी ना, लोभ और माया के बिटवीन वो कितना बड़ा है, तो इन बिटवीन इसका परस्पर गुणा करेंगे तो भी वहां तक नहीं पहुंचेंगे, इतनी बात बता रहे। तो कहते पुनः इससे भी लोभ और माया का अंतर अनंत गुना है, ऐसा कथन करने पर स्वस्थान में प्रविष्ट हुए समस्त गुणकारों के परस्पर गुणित करने पर प्राप्त हुई राशि से परस्थान गुणकार अनंत गुणा है, ऐसा जाना जाता है। यही बात उनको सिद्ध करनी थी कि तीसरी संग्रह पुष्टि के जो स्वस्थान गुणकार है उन गुणकारों को परस्पर गुणा करने पर भी वो आगे वाला जो परस्थान गुणकार है वो अनंत गुणा है। देखो लोक की दूसरी संग्रह पृष्टि के अंतर से स्वस्थान गुणकारों के परस्पर गुणा करने पर जो लब्ध आवे उसकी अपेक्षा भी यह तीसरी संग्रह पृष्टि का अंतर अनंत गुणा है। पुनः इससे भी लोभ और माया का अंतर अनंत गुणा है ऐसा कहने कथन करने पर स्वस्थान में प्रविष्ट हुए समस्त गुणकारों के परस्पर गुणित करने पर प्राप्त हुई राशि से परस्थान गुणकार अनंत गुणा है ऐसा जाना जाता है।
स्वस्थान में प्रविष्ट हुए समस्त गुणकार ये 12 पृष्ठ में जो स्वस्थान गुणकार सभी है उससे भी ये अनंत गुणा ऐसे बता रहे हैं।
12 का तो 12 का जो अंतिम गुणकार था उससे ये एक गुणकार अनंत गुणा है बात हुई। अब बात करते हैं इन बिटवीन एक एक संग्रह पुष्टि के इन बिटवीन जो गुणकार है स्वस्थान उनको परस्पर गुणा करना है। वहाँ तो अंतिम गुणकार से हमने परस्थान पहला परस्थान लिया था। अब यहाँ स्वस्थानों के आपस में गुणकार करने पर की बात है।
स्वस्थान का समस्त लेना है तो सभी के लेना है
सभी के करेंगे तो फिर आगे वाला कैसा हो जाएगा। 12 के नहीं ले सकते इसमें
एक का लेना है जिसकी अपन अभी बात कर रहे
हैं। लोक के तीनों तीसरे संग्रह पुष्टि में यहाँ क्या लिखा था 18 पेज पर अंतिम लाइन तीसरी संग्रह पृष्ठ में प्रविष्ट हुए समस्त स्वस्थान गुणकारों के परस्पर गुणा करने पर जो लब्ध आवे वह यहाँ पर गुणकार है। एक संग्रह पृष्ठ के अंदर के स्वस्थान गुणकारों की बात है।
सभी हम लोग सभी 12 पृष्ठ के स्वस्थान गुणकार ले लेंगे उससे भी परस्थान गुणकार अनंत गुणा है।
सभी गुणकारों को परस्पर गुणा करने पर नहीं अंतिम गुणकार से परस्थान गुणकार अनंत गुणकार।
हाँ तो अंतिम गुणकार तो सभी जो अंतिम गुणकार तो समस्त
अंतिम गुणकार कितना था
समस्त स्वस्थान गुणकार कितना था ना
अंतिम 16 गुणा बाधा था।
हाँ तो 16 गुणा बाधा तब क्या है जब समस्त स्वस्थान गुणकार किया तभी हम लोग को 16 गुणा बाधा बाधा रहा है।
अभी स्वस्थान गुणकारों की अर्थ क्या होता है ये बढ़ते 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 वहाँ तक पहुँचा
तो
कभी 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16 गुणा 32 गुणा 16 गुणा इसको भी गुणा
करना स्वस्थान के सभी गुणकार को गुणा किया
ना केवल इसको अंत गुणा किया तब आया था। अभी आपस में गुणा कहाँ किया था देखो यहाँ पर देखते ना आप गुणकारों की बात नहीं है अभी आप प्रतिच्छेदों की बात चल रही है। कृष्टि से कृष्टि में कितना अंतर है इस कृष्टि से वो कृष्टि कितनी गुना है यहाँ इस कृष्टि को एक्स मानेंगे तो ये कृष्टि कितनी गुना है इसकी बात चल रही है। परस्थान गुणकारों को गौण करके वो डायरेक्ट कितनी गुना है उसकी बात चल रही है। अकेले स्वस्थान स्वस्थान गुणकारों को गुणा करेंगे उसके बाद पहले केवल अनंत गुणा बढ़ता गया था। ये पढ़ना आप ये जो 384 पृष्ठ पर जो टेबल बनाया है वो पढ़ क्या ना नहीं तो यहाँ थोड़े आगे पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी होगी। ये समाधान फिर लोक की दूसरी संग्रह पृष्टि के अंतर से स्वस्थान गुणकार उनके परस्पर गुणा करने पर जो लब्ध आवे उसकी अपेक्षा भी। यह तीसरी संग्रह पुष्टि का अंतर अनंत गुणा है। पुनः इससे भी लोभ और माया का अंतर अनंत गुणा है। ऐसा कथन करने पर स्वस्थान में प्रविष्ट हुए समस्त गुणकारों के परस्पर गुणित करने पर प्राप्त हुई राशि से परस्थान गुणकार अनंत गुणा है ऐसा जाना जाता है। इसलिए इस प्रकार के अर्थ विशेष से प्रतिबद्ध होने के कारण यह सूत्र विषय रहित नहीं है यह सिद्ध हुआ। ये तो शंकाकार ने पूछा है तो बताने की क्या जरूरत थी, उसके लिए ये बात बताई उन्होंने। अथवा कहकर और भी कुछ बता रहे। तीसरी संग्रह पुष्टि और अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गणा का अंतर, तीसरी संग्रह पुष्टि का अंतर है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, यानी ये भी उसमें से अर्थ निकलता है। क्योंकि हर एक की अपने अपने तीन संग्रह पुष्टि है, तो तीसरी संग्रह पुष्टि के अंतिम पुष्टि से अपूर्व स्पर्धक की आदि वर्गणा, इसमें कितना गुणकार है उसको भी। लोक के अपूर्व स्पर्धक के नीचे 12 हुए, हरेक के अपने अपने नीचे है, परंतु अगर सर्वार्थ में देखेंगे हरेक के अपने अपने नीचे तीन तीन बनी है, परंतु लोक का अपूर्व स्पर्धक सबसे हीन था, उससे भी ये हीन हुई है 12 के बाद, एक के ऊपर एक 12 इसे देखो। ये तीसरी संग्रह पुष्टि का अंतर और किसको कह सकते हैं? तीन बातें बताई पहले। तीसरी संग्रह पुष्टि का अंतर यानी तीसरे लोभ का, तीसरा और माया का इन बिटवीन अंतर, उसको भी तीसरी संग्रह पुष्टि का अंतर कह सकते हैं। दूसरी बात, दूसरे संग्रह पुष्टि के अंत से तीसरे संग्रह पुष्टि का अंत, उसको भी तीसरी संग्रह पुष्टि का अंतर कहा। तीसरा अर्थ क्या बता रहे? तीसरी संग्रह पुष्टि जो अंतिम है उससे अपूर्व स्पर्धक के आदि वर्गना उसका अंतर, तीन पद्धति से इसको बताया। ठीक है, अथवा तीसरी संग्रह पुष्टि और अपूर्व स्पर्धक के आदि वर्गना का अंतर, तीसरी संग्रह पुष्टि का अंतर है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संग्रह पुष्टि और स्पर्धक के अंतर का भी किसी अपेक्षा संग्रह पुष्टि अंतर रूप से निर्देश करने में विरोध का अभाव है। हाँ, किसी अपेक्षा क्यों कहा? क्योंकि वो भी अंतर है ही ना, तो किसी अपेक्षा उसको भी कह सकते हैं। और ऐसा नहीं स्वीकार करने पर इससे आगे माया और लोक के अंतर के अनंत गुणत्व का विरोध आता है। किसी को ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, यानी ऐसा आशंका नहीं करनी चाहिए कि माया और लोभ के उसमें अनंत गुणापना नहीं होगा, क्योंकि लोभ के स्वस्थान अल्पभूतों का कथन करने पर इस प्रकार होता है। इसलिए अपने अपूर्व स्पर्धकों से संधान कर पुनः वहां से निवृत्त होकर और ये इन बिटवीन लाइन के सब ऊपर के जो एकार और एकार है वो सब चले गए। इस प्रकार होता है, सॉरी, वहां से निवृत्त होकर और अधस्तन पद को ही ग्रहण कर उससे लोभ और माया के अंतर का अनंत गुणे रूप से निर्देश का अवलंबन करने पर वह दोष नहीं प्राप्त होता। ये क्या कहना चाहते हैं? लोभ के जो अपना अंतिम था ना, लोभ की तीसरी संग, तो उसका अपूर्व स्पर्धक के आदि वर्गना, फिर उसके बाद आना फिर माया के पहले संग्रह पुष्टि में, ऐसा भी हो सकता है ऐसा कहते हैं। वहाँ तो ना कहता, परंतु अथवा कहकर ऐसा भी उन्होंने गुणकार का अनंत गुणत्व बताना था, इसलिए उसको ले लिया। अथवा और अथवा लोभ की तीसरी संग्रह पुष्टि का अंतर अनंत गुणा ऐसा कहने पर लोभ की तीसरी और माया की प्रथम। अभी ये बात आई यहाँ पर, संग्रह पृष्ठियों के संधि विषयक गुणकार को ही ग्रहण करना चाहिए, ये बराबर करना, जहां जहां ये ऊपर का छूट गए ना, के संधि विषय गुणकार को ही ग्रहण करना चाहिए। हाँ, और इस प्रकार अवलंबन करने पर अगले सूत्र को लक्ष्य कर पुनरुक्तपना भी नहीं होता, क्योंकि तीसरी संग्रह पृष्टि का अंतर अनंत गुना है। इस प्रकार यह सामान्य निर्देश होने से वह कौन सा है ऐसा संदेह उत्पन्न होने पर उसके निराकरण द्वारा लोभ और माया का अंतर ही तीसरी संग्रह पृष्टि का अंतर यहाँ पर विवक्षित है। उससे भिन्न नहीं इस बात का कथन करने के लिए अगले सूत्र का आरंभ करने पर पुनरुक्त दोष का प्राप्त होना असंभव है। ये उन्होंने किसको कह सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी बताई। अब कहते हैं पॉसिबिलिटी में से कौन सा लेना, पहले तो वो उसको निषेध करके आए थे, तो इसके लिए सूत्र बनाया उन्होंने कि ये लोभ और माया इन बिटवीन वही लेना चाहिए। बीच वाली जो बात है ना कि ऐसा होता तो इसको कहेंगे तो क्या होगा, उसको कहेंगे तो क्या होगा, इसको भी कह सकते, फिर वहां से नीचे आ सकते, ये सब पॉसिबिलिटी बताकर अब ये बात बता रहे हैं कि लोभस्य मायायेच अंतरम अनंत गुणम। लोभ संज्वलन और माया संज्वलन का अंतर अनंत गुणा है, यह सूत्र गतार्थ है, क्योंकि इससे अनंतर पूर्व सूत्र में ही इसका व्याख्यान कराए, क्योंकि उसी को तृतीय संग्रह पृष्ठी अंतर कहा था। द्वितीय माया है परम संग्रह किट्टी अंतरम अनंत गुणा, उससे माया की प्रथम संग्रह पृष्ठि का अंतर अनंत गुणा है। ऐसा कहने पर माया की प्रथम संग्रह पृष्टि को पृष्टि की अंतिम पृष्टि जिस गुणकार से गुणित की गई अपनी ही दूसरी संग्रह पृष्टि के प्रथम पृष्टि के प्रमाण को प्राप्त होती है, उस गुणकार को ग्रहण करना चाहिए। यानी माया के पहले और दूसरे संग्रह पृष्ठियों के बीच वाला गुणस्थान, माया के लिए पहला परस्थान। शेष कथन सुगम है। द्वितीय संग्रह किट्टी अंतरम अनंत गुणा, उससे दूसरी संग्रह पृष्टि का अंतर अनंत गुणा है, यह सूत्र सुगम है। तदीय संग्रह किट्टी अंतरम अनंत गुणम, उससे तीसरी संग्रह पृष्टि का अंतर अनंत गुणा है, यहाँ पर भी तीन प्रकारों से सूत्र के अर्थ का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उक्त कथन से इसमें कोई विशेषता नहीं है। यहाँ अल्पभूत 12 संग्रह में हो रहा है, इसलिए वो अन्य अर्थ यहाँ नहीं लेना है। फिर भी अगर उसको हम अल्पभूत में यानी अविभाग की अपेक्षा अगर बात करेंगे तो वो अर्थ भी यहाँ डाल सकते हैं, ये बात बता रहे हैं। अपना अपना विषय क्या चल रहा है, संग्रह पृष्ठियों के अल्पभूत, अगर उनकी संख्या को सोचना है तो उसको भी इन बिटवीन हम कह सकते, ये बात बताए। इसीलिए दूसरी संग्रह पृष्टि के अंत और तीसरी संग्रह पृष्टि का अंत इसका भी अर्थ लिया, बीच में अपूर्व स्पर्धक को भी लाया और माया और लोक के इन बिटवीन भी लाया।
सर यहाँ पे जो तीन प्रकार से सूत्र का अर्थ स्पर्धक करना चाहिए, तो लोक का जो अपूर्व स्पर्धक जो मिनिमम मोस्ट जो तैयार हुआ था उसका अभिभाग प्रतिच्छेद, ये जो मान का जो पृष्टि का है
अभिभाग प्रतिच्छेद को नहीं लेना, उसके गुणकार को लेना। वो आगे बताएंगे सबसे लास्ट, सभी पृष्ठियाँ होने के बाद वो बताएंगे, तब हम उसकी चर्चा करेंगे। सभी पृष्ठी हो जाएगी ना 12 संग्रह पृष्ठ, उसके बाद उसकी चर्चा होगी अपूर्व स्पर्धक। अभी तो 12 संग्रह पृष्ठियों में अल्प बहुत चल रहा है, तो पहले हमने पृष्ठी अंतर देखा, अब कहते संग्रह पृष्ठी अंतर देख रहे, यानी परस्थान गुणकारों को देख रहे, इन बिटवीन और भी संख्याएं बता रहे, परंतु हम केवल संग्रह पृष्ठियों को देखेंगे, बाद में संग्रह पृष्ठि और अपूर्व पृष्ठि का क्या संबंध है उसको देखेंगे। यहाँ हो गया तदीय संग्रह, तो ऐसा ही अर्थ करना चाहिए। माया है मानस से जो अंतरम अनंत गुणम, माया और मान का अंतर अनंत गुणा है। तो तृतीय संग्रह पृष्टि और माया मान का अंतर ऐसे दो अलग अलग नाम दिए, क्योंकि उसमें से तो तीन अर्थ निकलते थे, फिर भी उसका एक अर्थ यहाँ ग्रहण किया। तीसरी संग्रह पृष्टि के अंतर से इसमें कोई भेद नहीं है, किंतु तदीय संग्रह किट्टी अंतरम अनंत गुणम ऐसा कहने पर माया की अंतिम और मान की प्रथम संग्रह पृष्ठियों का जो अंतर है उसे ही ग्रहण करना चाहिए, अन्य नहीं। इस प्रकार पूर्व सूत्र में निर्दिष्ट किए गए ही अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए यह सूत्र अवतीर्ण हुआ है, यानी उसको माया मान का कहो या माया का तृतीय संग्रह पृष्ठ अंतर कहो, एक ही बात है, ये बात बताना चाहते थे। अब बाकी की बात कल देखेंगे हम। 21 पेज पर आए हूँ। जानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा लेत हो। अश्विन।